तीसरा अध्याय वैदिक साहित्य का विकास वेदांग और उपवेद। पहला छह वेदांग वैदिक साहित्य के अंगभूत वैदिक संहिताओं ब्राह्मणों आरण्यकों और उपनिषदों का विवरण पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। बाद में वेद संबंधी जिस साहित्य का विकास हुआ उसे वेदांग कहते हैं। ये वेदांग छह है। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में एक रूपक द्वारा इन्हें इस प्रकार से वेदों का अंग बताया गया है। छंद वेद के पाद हैं, कल्प छंद वेद के पाद हैं, कल्प हाथ है, ज्योतिष आँख है, निरुक्त कान है, शिक्षा नासिका है और व्याकरण मुख है। अतः इन अंगों के साथ वेदों का अध्ययन करने पर ही ब्रह्मलोक में महत्व की प्राप्ति संभव है। उपनिषदों और महाभाष्य में भी इन वेदांगों का उल्लेख है। मुंडक उपनिषद में विद्या के दो प्रकार बताए गए हैं, परा और अपरा। अपरा विद्या में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ उनके छह अंगों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष का परिगणन किया गया है। महाभाष्य में लिखा है कि ब्राह्मण को किसी कारण या प्रयोजन के बिना भी षडंग वेदों का अध्ययन करना चाहिए, उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गोपत ब्राह्मण सदृश अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी इन छह वेदांगों का उल्लेख विद्यमान है। इसमें संदेह नहीं कि वेदों के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए या उनके अध्ययन की सुगमता के लिए या उनकी शिक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिए जिस प्रकार ब्राह्मणों और आरण्यकों की रचना की गई है, वैसे ही प्रायः इन्हीं उद्देश्यों से वेदांगों का भी निर्माण किया गया। ये छओ वेदांग वेदों के अध्ययन तथा उनके अभिप्राय को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है। शिक्षा उस शास्त्र का नाम है जिसमें वर्णों और शब्दों का सही उच्चारण प्रतिपादित किया जाता है। प्राचीन आर्य वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण को बहुत महत्व देते थे, इसीलिए उन्होंने शिक्षा वेदांग के अनेक ग्रंथों की रचना की थी। शिक्षा से संबंध रखने वाले ग्रंथों में प्रातिशाख्यों का विशिष्ट स्थान है, जिन पर अगले प्रकरण में विशद रूप से प्रकाश डाला जाएगा। शब्द में किस वर्ण या मात्रा पर अधिक जोर देना चाहिए, इसका आर्यों की दृष्टि में बहुत महत्व था। यज्ञ व अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में वेद मंत्रों का विनियोग तभी पूरा फल दे सकता था जबकि उनका ठीक उच्चारण किया जाए। इसी कारण शिक्षा शास्त्र संबंधी अनेक ग्रंथों का विकास किया गया था। प्रतिशाख्यों से पूर्व भी शिक्षा शास्त्र की सत्ता थी। प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार इस शास्त्र का प्रारंभ बाभ्रव्य ऋषि द्वारा हुआ था। छंद शास्त्र में वैदिक छंदों का निरूपण किया जाता है। छंदों का यह विषय प्रातिशाख्यों में भी आता है, पर इस शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ छंद सूत्र है जिसे आचार्य पिंगल ने बनाया था। पिंगल का छंद सूत्र जिस रूप में आजकल मिलता है वह शायद बहुत प्राचीन नहीं है, पर इसमें संदेह नहीं कि वह प्राचीन छंद शास्त्रों के आधार पर लिखा गया है। वेदों को भली प्रकार से समझने के लिए व्याकरण शास्त्र बहुत उपयोगी है। संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ पाणिनीय अष्टाध्यायी है जिसे पाणिनि मुनि ने बनाया था। मुनि पाणिनि के अष्टाध्यायी वेदांग के अंतर्गत नहीं है क्योंकि उसमें प्रधानतया लौकिक संस्कृत भाषा का व्याकरण दिया गया है। वेद या छंदस की भाषा के नियम उसमें अपवाद रूप से ही दिए गए हैं, पर अष्टाध्यायी के रूप में संस्कृत व्याकरण अपनी विकास व पूर्णता की चरम सीमा को पहुंच गया था। पाणिनि का काल अंतिम रूप से निश्चित नहीं हुआ है, पर बहुसंख्यक विद्वान उन्हें 5वीं सदी ईसा पूर्व का मानते हैं। उनसे पूर्व अनेक व्याकरण हो चुके हैं जिनके प्रयत्नों के कारण ही संस्कृत का व्याकरण इतनी पूर्ण दशा को प्राप्त हुआ था। चंद्र, इंद्र आदि अनेक प्राचीन व्याकरणों के ग्रंथों की सत्ता के प्रमाण प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। यास्क के निरुक्त में शाकपुनि नामक आचार्य का उल्लेख आता है, जो व्याकरण शास्त्र का बड़ा आचार्य था। निरुक्त शास्त्र भी एक वेदांग है, जिसमें वेदों की व्युत्पत्ति या निरुक्ति का प्रतिपादन किया गया है। यास्काचार्य का निरुक्त इस शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यास्क से पूर्व इस शास्त्र के अन्य भी अनेक आचार्य हुए, जिनके मतों का उल्लेख यास्क ने अनेक बार अपने निरुक्त में किया है, पर इनमें से किसी भी आचार्य का ग्रंथ वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र भी 6 वेदांगों में से एक है। बाद में इस शास्त्र का भारत में बहुत विकास हुआ और आर्यभट्ट, ब्राह्मिहिर आदि अनेक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने इस विद्या को बहुत उन्नत किया। पर प्राचीन युग का केवल एक ग्रंथ इस समय मिलता है, जिसका नाम ज्योति वेदांग है। इसमें केवल 40 श्लोक हैं और सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि का वर्णन है। पर प्राचीन काल में ज्योतिष भली भांति विकसित था और वैदिक संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में भी ज्योतिष संबंधी अनेक तथ्य पाए जाते हैं। आर्यों के व्यक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के क्या नियम हों, वे किन संस्कारों व कर्तव्यों का अनुष्ठान करें, इस महत्वपूर्ण विषय का प्रतिपादन कल्प वेदांग में किया गया है। कल्प के 3 भाग हैं, स्रोत, गृह और धर्म। ब्राह्मण ग्रंथों में यागिक कर्मकांड का बहुत विशद रूप में प्रतिपादन था। प्रत्येक यागिक व अन्य विधि का इतने विस्तार के साथ वर्णन उनमें किया गया था कि सर्वसाधारण जीवन व व्यवहार में उसका सुगमता के साथ उपयोग संभव नहीं था। अतः यह आवश्यकता अनुभव की गई कि वैदिक अनुष्ठानों को संक्षेप के साथ प्रतिपादित किया जाए और किया जाए। स्रोत सूत्रों की रचना इस दृष्टि से की गई थी, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथों का सार कहा जा सकता है, यद्यपि वैदिक विधियों में कुछ परिवर्तन व संशोधन भी उनसे सूचित होता है। गृह सूत्रों में आर्य गृहस्थ के उन विधि विधानों का वर्णन है जो उसे आवश्यक रूप से करना चाहिए। जन्म से मृत्यु पर्यंत आर्य गृहस्थ को अनेक धर्मों का पालन करना होता है और अनेक संस्कार करने होते हैं और अनेक अनुष्ठानों का संपादन करना होता है। इन सब का प्रतिपादन गृह सूत्रों में किया गया है। एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति या समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं, वह दूसरे के साथ बढ़ते हुए उसे जिन नियमों का पालन करना चाहिए, उनका विवरण धर्म सूत्रों में दिया गया है। वर्तमान समय में जो सूत्र ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, उनमें अधिक महत्वपूर्ण निम्नलिखित है: गौतम धर्म सूत्र, बौद्धायन धर्म सूत्र, आपस्तंभ सूत्र, मानव सूत्र, काठक सूत्र, कात्यायन स्रोत, प्रास्कर गृह सूत्र, आश्वलायन स्रोत सूत्र, आश्वलायन गृह सूत्र, सांख्यायन स्रोत्र श्रुत, सांख्यायन गृह श्रुत, लाट्यायन स्रोत श्रुत, गोभिल गृह सूत्र, कौशिक सूत्र और वैतान स्रोत सूत्र। इन विविध सूत्र ग्रंथों के नामों से ही यह बात सूचित होती है कि इनका विनिर्माण विविध प्रदेशों में और विविध संप्रदायों में हुआ था। प्राचीन भारत में विविध आचार्यों द्वारा ज्ञान व चिंतन के पृथक पृथक संप्रदायों का विकास किया गया था और इन संप्रदायों में विधि विधान, विचार व ज्ञान की अपनी अपनी परंपराएं जारी रहती थी। वेदांग का संक्षिप्त परिचय देने के पश्चात अब हम प्रत्येक वेदांग के संबंध में विशद रूप से प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा, शिक्षा वेदांग। जिस शास्त्र में स्वर, वर्ण आदि के सही उच्चारण का प्रतिपादन किया जाता है, उसे शिक्षा कहते हैं। वेदों का सम्यक प्रकार से अध्ययन करने के लिए वैदिक मंत्रों और शब्दों के शुद्ध उच्चारण को बहुत महत्व दिया जाता रहा है। इसका एक कारण यह है कि एक ही शब्द के स्वर भेद से भिन्न अर्थ हो जाते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, उदात, अनुदात और स्वरचित। उच्च स्वर को उदात, धीमे स्वर को अनुदात और मध्यम न बहुत ऊंचा न बहुत धीमा स्वर को स्वरित कहते हैं। उदात के स्थान पर अनुदात स्वर का उच्चारण करने पर कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इस संबंध में एक प्राचीन आख्यायिका है जिसका उल्लेख पाणिनीय शिक्षा में किया गया है। आख्यायिका यह है कि वृत्र ने अपने शत्रु इंद्र के विनाश के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें कि बहुत से ऋत्विगों को आमंत्रित किया गया था। यज्ञ में इस मंत्र को पुनः पुनः बोला जा रहा था। इंद्र शत्रु वर्धवस्व अर्थात इंद्र के शत्रु का उत्कर्ष हो, इंद्र के शत्रु की विजय हो। पर इंद्र शत्रु का अर्थ इंद्र का शत्रु, इंद्रस्य शत्रु तभी संभव था जब यह शब्द अंतोदात हो अर्थात इसके अंतिम भाग को उदात स्वर में बोला जाए। पर ऋत्विगों ने असावधानी से इंद्र शत्रु के ई का उदात स्वर से उच्चारण प्रारंभ कर दिया जिसके कारण इस शब्द का अर्थ इंद्र का शत्रु नहीं रह गया और मंत्र द्वारा जिस इंद्र के शत्रु के विजय की प्रार्थना की जा रही थी वह न केवल फलवती नहीं हो सकी अपितु उसी के लिए घातक हो गई। वाणी भी वज्र के समान होती है, यदि उसका ठीक प्रकार से उपयोग न किया जाए तो वह प्रयोक्ता के लिए ही घातक सिद्ध हो सकती है। अतः शिक्षा वेदांग द्वारा यह जाना जाता है कि शब्दों का सही ढंग से कैसे प्रयोग किया जाए और उसके वर्णों का उच्चारण किस प्रकार हो। स्वर वर्ण उच्चारण आदि के दोषों का निराकरण करना ही इस वेदांग का प्रयोजन है और इसीलिए प्राचीन समय में बहुत से शिक्षा संबंधी ग्रंथों की रचना की गई थी। तैत्तरीय उपनिषद में स्पष्ट रूप से इस वेदांग के मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, वहां इसके 6 अंग बताए गए हैं, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल्लम, साम और संतान। वर्ण का अभिप्राय अक्षरों से है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत भाषा की वर्णमाला में 63 या 64 अक्षर या वर्ण हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। मात्राएं भी तीन प्रकार की होती है, हर्ष, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। बल से वह स्थान अभिप्रेत है। वर्ण का उच्चारण करते हुए मुख के जिस स्थान पर वायु टकराती है वर्णों तथा शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए यह जानना भी उपयोगी होता है कि उन्हें बोलते हुए मुख के किस भाग पर बल दिया जाए। माधुर्य आदि गुणों से युक्त निर्दोष उच्चारण के लिए साम शब्द प्रयुक्त किया गया है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार निर्दोष व उत्तम उच्चारण तभी संभव है जब उसमें निम्नलिखित गुण हो, माधुर्य, अक्षर व्यक्ति, प्रत्येक अक्षर का पृथक पृथक स्पष्ट उच्चारण, पदच्छेद, प्रत्येक पद का अलग अलग उच्चारण, सुस्वर, फिर धैर्य, धीरता से पाठ करना और लय समर्थ, लय के साथ पढ़ना। शिक्षा वेदांग का अंतिम अंग संतान है जिसमें शब्दों या पदों का सानिध्य अभिप्रेत है। जब दो पृथक शब्द वाक्य में एक दूसरे के समीप होने के कारण एक साथ बोले जाते हैं तो प्रायः उनमें संधि हो जाती है। वायु आयाही, इसमें वायु और आयाही दो पृथक शब्द हैं। जब उन्हें एक साथ बोला जाता है तो वे मिलकर वायवायाही रूप प्राप्त कर लेते हैं, इसी को संतान कहते हैं। शिक्षा वेदांग में इसका भी निरूपण किया जाता है। वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए जिस शिक्षा वेदांग का विकास हुआ उसके अनेक ग्रंथ वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पाणिनीय शिक्षा है जिसकी कुल श्लोक संख्या 60 है। यह पाणिनीय मुनि द्वारा विरचित मूल ग्रंथ नहीं है, अपितु उसके आधार पर बाद के काल में बनाया गया था। पाणिनीय का मूल ग्रंथ सूत्रों में था, श्लोकों में नहीं। संभवतः पाणिनि का शिक्षा ग्रंथ वही था जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ण उच्चारण शिक्षा के नाम से प्रकाशित कराया था। पाणिनीय शिक्षा के अतिरिक्त शिक्षा वेदांग विषयक जो अन्य ग्रंथ वर्तमान समय में उपलब्ध हैं उनमें याज्ञवल्क्य की शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, नारदीय शिक्षा, मांडुकी शिक्षा, प्रसारी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा और माध्यनंदिनी शिक्षा उल्लेखनीय है। पर अनेक शिक्षा ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनका उल्लेख तो प्राचीन साहित्य में मिलता है पर जो अब प्राप्य नहीं है। महाभारत के शांति पर्व में गालव कृत एक शिक्षा ग्रंथ का उल्लेख है जिसकी सत्ता पाणिनीय अष्टाध्यायी से भी सूचित होती है। राजशेखर द्वारा लिखित काव्य मीमांसा में आचार्य आपिसली के शिक्षा ग्रंथ का उल्लेख विद्यमान है। आपिसली पाणिनि से पहले हुए थे। हेमचंद्र ने शब्दानुशासन की वृत्ति में इस शिक्षा ग्रंथ से एक उदाहरण भी दिया है। तीसरा, छह वेदांग। वैदिक संहिताओं का बड़ा भाग पद्य में है, अतः छंदों का समुचित ज्ञान वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए आवश्यक है। जब तक छंद का समुचित ज्ञान नहीं होता मंत्र का उच्चारण सही ढंग से नहीं किया जा सकता। इसीलिए कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी में लिखा है कि जो कोई ऋषि छंद तथा देवता से अभिदित होते हुए मंत्र से यज्ञ कराता है या मंत्रों को पढ़ाता है वह गड्ढे में गिरता है और पाप का भागी होता है। पद्यों के लिए तो छंद ज्ञान आवश्यक है ही, पर वेदों में जो गद्य भाग हैं उसके लिए भी छंद का ज्ञान उपयोगी है क्योंकि वह भी किसी न किसी छंद के नियमों के अनुसार निर्मित हैं। इस संबंध में कात्यायन का यह कथन महत्व का है कि जानकार व्यक्ति के लिए यह सारा वाङ्मय वैदिक वाङ्मय छंदोभूत छंद के नियमों से आबद्ध ही है। भरत मुनि के अनुसार न शब्द के बिना छंद हो सकता है और न छंद के बिना शब्द। इस प्रकार वैदिक ऋचाएं चाहे पद्य के रूप में हों और चाहे गद्य के रूप में सब छंदोबद्ध हैं और इन छंदों का ज्ञान वेद मंत्रों के सम्यक उच्चारण तथा सस्वर पाठ के लिए अनिवार्य है। छंद अनेक प्रकार के हैं जिन्हें साधारणतया दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, अक्षर गणनानुसारी और पादाक्षर गणनानुसारी। पहले प्रकार के छंदों में केवल अक्षरों की गणना की जाती है, उन्हें पादों में विभक्त नहीं किया जाता है। इसी प्रकार के छंद पहले पादों में विभक्त होते हैं और प्रत्येक पाद में कितने अक्षर हों यह निर्धारित रहता है। वेदों के मुख्य छंदों के नाम और उनके अक्षरों की संख्या इस प्रकार है। गायत्री 24 अक्षर या वर्ण, उसनिक 28 अक्षर, अनुष्टुप 32 अक्षर, बृहति 36 अक्षर, पंक्ति 40 अक्षर, त्रिष्टुपु 44 अक्षर, जगति 48 अक्षर, अति जगति 52 अक्षर, सकबरी 56 अक्षर, अति सकबरी 60 अक्षर, अष्टि 64 अक्षर, अत्यष्टि 68 अक्षर, धृति 72 अक्षर, अति धृति 76 अक्षर, कृति 80 अक्षर, प्रकृति 84 अक्षर, आकृति 88 अक्षर, विकृति 92 अक्षर, विकृति 92 अक्षर, संस्कृति 96 अक्षर, अभिकृति 100 अक्षर और उत्कृति 104 अक्षर। गायत्री छंद में 3 पाद होते हैं और उसमें प्रत्येक पाद में 8-8 वर्ण या अक्षर रहते हैं। उसनिक छंद में 3 पाद अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति छंदों में 4-4 पाद, अति जगति, अति सकवरी और अति और अष्टि छंदों में पांच पांच पाद, सकवरी अत्यष्टि और घृति में सात सात पाद और अधिघृति में आठ आठ पाद होते हैं। इन छंदों के भी अनेक भेद हैं जिनका आधार अक्षरों की संख्या में कमी या अधिकता का होना है। छह वेदांग पर जो ग्रंथ वर्तमान समय में उपलब्ध है उनमें छंद सूत्र प्रधान है और इसके रचयिता आचार्य पिंगल को माना जाता है। अनेक प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पिंगल पाणिनि के अनुज थे। यदि यह बात सही हो तो पिंगल का समय पांचवी या छठी सदी ईस्वी पूर्व में मानना होगा, पर पिंगल से पूर्व भी अनेक ऐसे आचार्य हो चुके हैं जिन्होंने कि छंद वेदांग पर ग्रंथ लिखे थे। ऐसे अनेक आचार्यों के नाम पिंगल के ग्रंथ में आए हैं जिनमें कौष्टुकी, यास्क, तांडी, सैंतव, काश्यप, रात और मांडव्य उल्लेखनीय हैं। इन सात आचार्यों के मत भी पिंगल द्वारा उल्लिखित किए गए हैं। प्रातिशाख्य नाम से इनके जो ग्रंथ इस समय उपलब्ध हैं उनका विवरण इसी अध्याय में आगे चलकर दिया जाएगा। प्रातिशाख्यों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय छंद नहीं है, पर उनमें भी अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें छंदों का भी निरूपण किया गया है। छह वेदांग के अन्य उपलब्ध ग्रंथों में निदान सूत्र का उल्लेख आवश्यक है। यह साम वेद की अनुकर्मणी के रूप में है, पर इसमें साम वेद के छंदों का भी विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है। निदान सूत्र में 10 प्रवाक्य हैं और इसे पतंजलि द्वारा विरचित माना जाता है। इस सूत्र में स्वयं ही इसे भगवान पतंजलि द्वारा उक्त कहा गया है। व्याकरण वेदांग। षड वेदांगों में व्याकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। पतंजलि ने इसे छह वेदांगों में सर्व प्रधान कहा है। उनके अनुसार व्याकरण वेदांगों में प्रधान है। प्रधान के लिए जो यत्न किया जाता है वही फलवान होता है। इसी व्याकरण के ज्ञान से सब पुण्यों के फलों की प्राप्ति होती है और इसका अध्ययन करने वाले के माता पिता स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करते हैं। पतंजलि ने व्याकरण के अध्ययन के पांच प्रयोजन बताते हैं। रक्षा, उहा, आगम, लध्वर्थ और असंदेह। रक्षा से वेदों की रक्षा अभिप्रेत है। वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए क्योंकि लोक, आगम और वर्ण विकार का ज्ञाता ही वेदों का परिपालन कर सकता है। उहा का अभिप्राय यह है कि वेद मंत्रों के आवश्यकता अनुसार लिंग और विभक्ति की कल्पना की जा सके। वेद मंत्र न सब लिंगों में है और न सब विभक्तियों में। यज्ञ करते हुए जब उनका विनियोग किया जाता है तो आवश्यकता अनुसार उनमें आए लिंग और विभक्ति को बदल दिया जाता है, जो व्याकरण ज्ञान के बिना संभव ही नहीं है। व्याकरण के पढ़ने का यह महत्वपूर्ण लाभ है। ब्राह्मणों को तो निष्कारण में भी षडंग वेदों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि आगम श्रुति को यही अभिप्रेत है और छहों वेदांगों में व्याकरण सर्व प्रधान है। शब्दकोश अत्यंत विशाल है और सब शब्दों का इस जीवन में ज्ञान प्राप्त कर सकना सुगम नहीं है, पर ब्राह्मण के लिए यह आवश्यक है कि शब्दों का ज्ञान प्राप्त करे और शब्द ज्ञान का लघु उपाय यही है कि व्याकरण का अध्ययन किया जाए। बहुधा वैदिक शब्दों के अभिप्राय के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाते हैं। वेदों में ऐसे समस्त समास युक्त शब्द मिलते हैं जिनके विषय में यह असंदिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनमें कौन सा समास है। समास यदि तत्पुरुष है तो एक अर्थ होगा, यदि बहुव्रीही समास है तो दूसरा अर्थ होगा। इस प्रकार के संदिग्ध स्थलों पर व्याकरण द्वारा ही संदेह का निवारण किया जा सकता है। अतः वेदांग में असंदेह के लिए व्याकरण का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इसमें संदेह नहीं कि अन्य वेदांगों के समान व्याकरण भी एक महत्वपूर्ण वेदांग है और प्राचीन भारतीयों ने उसके विकास के लिए बहुत प्रयत्न किया था। वर्तमान समय में व्याकरण विषयक संस्कृत के जो ग्रंथ उपलब्ध हैं उनमें पाणिनीय व्याकरण सर्वाधिक महत्व का है। यह 8 अध्यायों में विभक्त है, अतः अष्टाध्यायी भी कहता है। प्रत्येक अध्याय में बहुत से सूत्र हैं जिनकी संख्या 4000 के लगभग है। विश्व के व्याकरण संबंधी साहित्य में अष्टाध्यायी का स्थान बहुत ऊंचा है। जिस वैज्ञानिक ढंग से उसमें अत्यंत संक्षिप्त सूत्रों द्वारा संस्कृत के व्याकरण का प्रतिपादन किया गया है वह अद्वितीय है। यद्यपि पाणिनि ने प्रधानतया लौकिक संस्कृत के व्याकरण की रचना की थी, परंतु प्रसंगवश उसमें वैदिक व्याकरण के नियमों का भी निदर्शन कर दिया गया है। पाणिनि का काल 5वीं-6वीं सदी ईस्वी पूर्व में माना जाता है। बाद में कात्यायन मुनि ने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे जिन्हें पाणिनीय व्याकरण का पूरक कहा जा सकता है। संभवतः कात्यायन का समय 4थी सदी ईस्वी पूर्व में था। 2री सदी ईस्वी पूर्व में महर्षि पतंजलि हुए जिन्होंने पाणिनीय अष्टाध्याय की व्याख्या के रूप में महाभाष्य की रचना की। पतंजलि का यह ग्रंथ संस्कृत वाङ्मय में अत्यंत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। इसमें अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या के साथ साथ व्याकरण के वैज्ञानिक व दार्शनिक सिद्धांतों की भी विवेचना की गई है। पाणिनि द्वारा संस्कृत व्याकरण की जिस अध्ययन पद्धति का प्रवर्तन किया गया था उसके अनुसार बाद के समय में अनेक ग्रंथों की रचना हुई जो प्रायः अष्टाध्यायी पर भाष्य वृत्ति या टीका के रूप में है। इनमें बामन या जयादित्य द्वारा लिखित काशिका वृत्ति विशेष महत्व की है। संस्कृत विद्वानों में इस वृत्ति का बहुत आदर है और अष्टाध्यायी को समझने के लिए वे प्रायः इसी पर निर्भर करते हैं। बामन और जयादित्य कश्मीर के निवासी थे और 6ठी सदी में हुए थे। बाद के समय में काशिका वृत्ति पर भी अनेक टीकाएँ लिखी गई जिनमें हरदत्त की पद्मंजरी उल्लेखनीय है। यद्यपि वर्तमान समय में उपलब्ध व्याकरण ग्रंथों में अष्टाध्यायी प्रधान है, पर पाणिनि से पूर्व भी अनेक व्याकरण हो चुके थे और उन द्वारा वैदिक तथा लौकिक संस्कृत के प्रामाणिक व्याकरण लिखे गए थे। शाक्यायन के ऋक् तंत्र के अनुसार व्याकरण का ज्ञान ब्रह्मा द्वारा बृहस्पति को प्रदान किया गया। बृहस्पति द्वारा इंद्र को, इंद्र द्वारा भारद्वाज को, भारद्वाज द्वारा ऋषियों को और ऋषियों द्वारा ब्राह्मणों को। बृहस्पति और इंद्र सदृश वैयाकरणों का उल्लेख अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी विद्यमान है। तैत्तिरीय संहिता में लिखा है कि पहले वाक् वाणी या भाषा अव्याकृत थी, अर्थात उसमें व्याकरण का अभाव था। इस दशा में देवों ने इंद्र से कहा, आप वाक् को व्याकरण दीजिए। इंद्र ने देवों की प्रार्थना को स्वीकार कर व्याकरण की रचना की। अब वाक् अव्याकृत न रहकर व्याकृत हो गई। पतंजलि के महाभाष्य में लिखा है कि बृहस्पति वक्ता थे और इंद्र अध्येता, उनमें अध्ययन करने वाले थे। उनके अध्ययन का काल 1000 दिव्य वर्ष था, पर इतने समय में भी वह शब्द रूपी सागर को पार नहीं कर सके। यास्काचार्य के निरुक्त की टीका करते हुए दुर्गाचार्य ने इंद्र चंद्र काशकृत्सन आपिसली शाक्यायन पाणिनि अमर और जनिंद्र के नाम शाब्दिकों वैयाकरणों के रूप में दिए हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी आपिसली कश्यप गार्ग गालब भारद्वाज शाक्यायन का साकल्य आदि कितने ही प्राचीन वैयाकरणों के नाम आए हैं। इसमें संदेह नहीं कि पाणिनि से पूर्व भी भारत में व्याकरण वेदांग का भली भांति विकास हो चुका था और प्राचीन समय में ऐसे भी अनेक ग्रंथों की सत्ता थी जिनका विषय वैदिक व्याकरण था। वाणी या भाषा को व्याकृत व्याकरण द्वारा व्याकृत रूप देने का प्रधान श्रेय इंद्र को दिया गया है। इंद्र द्वारा निर्मित या इंद्र व्याकरण की सत्ता के अनेक प्रमाण उपलब्ध व्याकरण ग्रंथों में विद्यमान हैं। काशिकावृत्ति की तत्व विमर्शनी व्याख्या में यह वाक्य आया है, तथा च्योक्तम इंद्र ने अंतर वर्ण समुद्भूता घातव प्रकृतिता इति। यह स्पष्टतया इंद्र व्याकरण से दिया हुआ उद्धरण है। इस प्रकार के उद्धरणों से यह प्रमाणित हो जाता है कि आचार्य इंद्र द्वारा विरचित व्याकरण ग्रंथ पहले विद्यमान था। वैदिक साहित्य से संबंध एक अन्य वर्ग के ग्रंथ वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, जिन्हें प्रातिशाख्य कहते हैं। इनमें वैदिक संहिताओं की भाषा के व्याकरण संबंधी नियमों पर भी प्रकाश डाला गया है, पर प्रातिशाख्य विशुद्ध रूप से व्याकरण विषयक ग्रंथ नहीं है। उनमें शिक्षा और छंद का विषय भी समाविष्ट है, पर वैदिक व्याकरण के लिए वे विशेष रूप से उपयोगी है। हम इन ग्रंथों पर इसी अध्याय के 8वें प्रकरण में पृथक रूप से प्रकाश डालेंगे। निरुक्त वेदांग 5वां निरुक्त वेदांग 6 वेदांगों में निरुक्त भी एक है। 6 वेदांग में शब्दों की निरुक्ति या व्युत्पत्ति की जाती है। निरुक्त शास्त्र के अनुसार प्रत्येक शब्द किसी न किसी धातु से संबद्ध होता है, इसीलिए यह वेदांग शब्दों को व्युत्पन्न या धातुज मानता है। उदाहरण के लिए दुहिता शब्द को लीजिए। निरुक्त के अनुसार इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार प्रतिपादित की गई है, दुहिता कस्मात् दुहिता, दूरे हिता दोगधेर वा। कन्या को दुहिता इस कारण कहते हैं क्योंकि माता पिता का हित इसी बात में है कि वह उनसे दूर रहे या वह उनसे सदा धन को दोहती रहती है, या उसका हित संपादित करना कठिन होता है। सब शब्दों की इसी ढंग से व्युत्पत्ति की जा सकती है। शब्द और अर्थ में जो संबंध है वह सहेतुक है, अकारण नहीं। इस संबंध को प्रतिपादित करना निरुक्त का कार्य है। निरुक्त शब्दों को रूढ़ि नहीं मानता, उसके अनुसार वैदिक शब्द यौगिक हैं। इसी कारण उनकी अनेक प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो वेद मंत्रों के आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक तीन प्रकार के अर्थ करने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उसका आधार निरुक्त का यह मत ही है कि वैदिक शब्द यौगिक है। निरुक्त निघंटु की व्याख्या के रूप में है। वेदों के कठिन शब्दों को निघंटु में संग्रहित किया गया है, उसे वैदिक शब्दकोश कहा जा सकता है। कतिपय विद्वानों के अनुसार निरुक्त के कर्ता यास्काचार्य ने ही निघंटु के रूप में वेदों के द्रुह शब्दों का संग्रह भी किया था और फिर निरुक्त के रूप में उस पर भाष्य लिखा था, पर प्राचीन ग्रंथों में निघंटु का निरुक्त से पूर्ववर्ती होना प्रमाणित होता है। महाभारत के अनुसार निघंटु की रचना सबसे पहले प्रजापति कश्यप द्वारा की गई थी। वर्तमान समय में जो निघंटु उपलब्ध है वह प्रजापति कश्यप द्वारा विरचित है या नहीं, इस प्रश्न पर मतभेद हो सकता है, पर यह मानना असंगत नहीं होगा कि अत्यंत प्राचीन काल में भारत में वेदों के विशिष्ट एवं द्रुह शब्दों का पृथक पृथक वर्गों में कोश बनाने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो चुकी थी और इस प्रकार के कोशों को निघंटु कहा जाता था। वर्तमान समय में जो निघंटु ग्रंथ उपलब्ध हैं उसमें तीन कांड हैं, नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत्त कांड। नैघंटुक कांड में 3 अध्याय हैं और अन्य कांडों में एक एक अध्याय हैं। यास्क का निरुक्त इसी निघंटु की व्याख्या के रूप में है, पर निघंटु की एक अन्य व्याख्या भी मिलती है जिसे देवराज यज्वा ने लिखा था, पर इनका समय सायन से पहले का है। अपने भाष्य में देवराज यज्वा ने क्षीर स्वामी तथा अनंताचार्य द्वारा की गई निघंटु की व्याख्याओं का भी उल्लेख किया है। पर इनके व्याख्या ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है। निघंटु की व्याख्या के प्रयोजन से जो निरुक्त लिखे गए उनमें यास्काचार्य का निरुक्त सबसे प्रसिद्ध है और वही इस समय प्राप्य भी है। यास्क के निरुक्त में भी अपने से पूर्ववर्ती अनेक निरुक्तकारों के नाम दिए गए हैं, आग्रयायन, औदुम्बरायन, स्वर्णाभ, कात्थक, कौष्टुकी, गार्ग, गालव, चर्मशिरा, तत्की, सत्वलाच, साकपुनी, सौथलाष्ठीवी, साकटायन, साकल्य, कौतस और बासरयायनी आदि। इन आचार्यों के अतिरिक्त यास्क ने इति एके व अप्रे लिखकर अन्य आचार्यों के मतों को भी निर्दिष्ट किया है। इससे इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि यास्क से पूर्व अन्य भी अनेक निरुक्त ग्रंथों की सत्ता थी और यह वेदांग भी सुचारू रूप से उन्नत एवं विकसित दशा में था। यास्काचार्य का समय पाणिनि से पहले है। पाणिनि के गणपाठ में निरुक्त शब्द भी आया है और अष्टाध्यायी के एक सूत्र द्वारा यास्क शब्द की सिद्धि भी की गई है। महाभारत के शांति पर्व में यास्क और उन द्वारा विरचित निरुक्त का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। पतंजलि के महाभाष्य में भी निरुक्त का उल्लेख विद्यमान है। इन सब बातों को दृष्टि में रखकर यास्क के काल को 7वीं सदी ईस्वी पूर्व या उससे भी कुछ पहले का माना जाता है। निरुक्त पर अनेक टीकाएं भी बाद में लिखी गई जिनमें दुर्गाचार्य की टीका सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें निरुक्त में आए वेद मंत्रों की व्याख्या बड़े स्पष्ट रूप में की गई है, पर निरुक्त पर दुर्गाचार्य की टीका सबसे पुरानी नहीं है क्योंकि उसमें अनेक स्थानों पर प्राचीन टीकाकारों का उल्लेख मिलता है। दुर्गाचार्य का काल अभी निश्चित नहीं किया जा सका है। निरुक्त पर एक अन्य टीका स्कंद महेश्वर की उपलब्ध है। इसे 7वीं सदी की रचना माना जाता है। निरुक्त के सिद्धांतों के अनुसार आचार्य वररुचि ने निरुक्त नीचे नाम से एक ग्रंथ की रचना की थी जिसमें 100 के लगभग श्लोक हैं। मध्यकाल में जिन विद्वानों ने वेदों पर भाष्य लिखे प्रायः उन सब ने निरुक्त और उसकी टीकाओं का सहारा लिया है। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि वेदों के अर्थ को समझने के लिए निरुक्त वेदांग की बहुत उपयोगिता है। छठा, कल्प वेदांग। प्राचीन वैदिक धर्म में यागिक कर्म कांड तथा संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान था। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना इसी प्रयोजन से की गई थी ताकि यागिक विधि विधान का निरूपण किया जा सके और साथ ही यह भी प्रतिपादित किया जा सके कि उनमें वेद मंत्रों का किस प्रकार विनियोग किया जाता है। बाद में यह आवश्यकता अनुभव की गई कि यागिक विधि विधानों और संस्कारों आदि का संक्षेप के साथ निरूपण किया जाए क्योंकि क्रियात्मक दृष्टि से यह अधिक उपयोगी था, इसीलिए कल्प वेदांग की रचना की गई। वेद विहित कर्मों अर्थात यज्ञ संबंधी कर्मकांड तथा विविध संस्कार आदि का जिस शास्त्र में क्रमबद्ध रूप से प्रतिपादन किया जाए वही कल्प कहलाता है। सायनाचार्य के अनुसार कल्प सूत्र मंत्रों का विनियोग बताकर यागिक अनुष्ठान की विधि का प्रतिपादन करते हैं और यही उनकी उपकृति है। कल्प वेदांग के ये ग्रंथ सूत्रों के रूप में हैं। सूत्र की परिभाषा यह है कि उसमें अक्षर कम हो, सब बात सार के रूप में कह दी गई हो और अभिप्राय को असंदिग्ध रूप में से प्रकट किया गया हो। कल्प वेदांग के 3 भाग हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। कतिपय विद्वानों ने सुल्ब सूत्र को कल्प वेदांग के 4थे भाग के रूप में प्रतिपादित किया है, पर वस्तुतः उसे श्रौत सूत्र के अंतर्गत ही समझना चाहिए क्योंकि उसमें यज्ञ की वेदी के निर्माण की विधि तथा माप आदि विषयों का प्रतिपादन किया जाता है जिनका संबंध श्रौत सूत्र के विषय के साथ ही है।